भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतम् नरो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्रीमद् भागवतम् स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। श्री राजा उवाच दृष्टसुतभं यत्पापं जाननोऽपि आत्मनहितं करोति भूय विवशः प्राचित्तम अथो कथम। शब्द अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। श्री राजा उवाच परीक्षित महाराज ने उत्तर दिया, दृष्टा देखने से, श्रुतभम शास्त्र आदि विधि ग्रंथों से, सुनने से भी, यत् चूंकि पापम पाप पूर्ण अपराध पूर्ण कार्य जानना जानते हुए, ओपि अद्यपि आत्मना स्वयं का अहितम हानिकर करोति करता है भूय पुनः पुनः विवशः अपने को नियंत्रित करने में अक्षम प्राश्चित्तम प्राश्चित अथो इसलिए कथम क्या लाभ। अनुवाद महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकर हैं, क्योंकि वह वस्तुतः वहाँ देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है और वह शास्त्र तथा विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है, फिर भी ऐसा जाना होता है भी ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्राश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अतः ऐसे प्राश्चित्तों का क्या महत्व है। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइए। महाराज परीक्षित ने कहा कि मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकर है, क्योंकि वह वस्तुतः वह देखता है कि अपराधी सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है और वह शास्त्र तथा विद्वान पंडित से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसे ज्ञान होते हुए भी मनुष्य को प्रायश्चित करने का के बावजूद बार बार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व? तात्पर्य, कुछ धार्मिक संप्रदायों में पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों को कबूलने के लिए तथा जुर्माना देने के लिए पुरोहित के पास जाता है, किंतु उसके बाद वह पुनः वही पाप करता है और उसे स्वीकारने के लिए पुनः आता है। अहां पेशेवर पापी की आदत है। परीक्षित महाराज ने कहने से सूचित होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी अपराधियों में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने और पुनः उन्हें अपराधी को करने की प्रथा थी, मानो उनसे ये कराए जा रहे हो। इसीलिए अपने व्यवहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। कोई कितने ही बार दंडित क्यों न किया जाए, यदि वह इंद्र भोग के प्रति आसक्त है तो वह तब तक बारंबार पाप कर्म करेगा जब तक उसे अपने इंद्रियों का भोग करने से दूर रहने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। वहां पर विवश शब्द प्रयुक्त हुआ है जो वह सूचित करता है कि जो पाप कर्म नहीं करना चाहते नहीं चाहता उसे भी आदतवश पाप कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसीलिए महाराज परीक्षित ने मनुष्य को उसके पाप कर्मों से बचाने के लिए प्रायश्चित विधि को बहुत ही अल्प महत्व का माना। अगले श्लोक में उनके द्वारा इस विधि के तिरस्कार किए जाने को व्याख्या की गई है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वंचा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु भयेभच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भागवत क्लास में सभी को स्वागत करते हैं। और सभी से प्रार्थना करते हैं ये कृपा दृष्टि करे, आशीर्वाद करे। जो ये महत्वपूर्ण श्लोक हैं कुछ इसके ऊपर चर्चा कर सके। तो आज का जो अध्याय है इसका नाम है ओजामिल के जीवन का इतिहास। बहुत प्रसिद्ध कथा है ओजामिल कथा। और ओजामिल ये तो बहुत लंबा स्टोरी है, ये शुरुआत है, उसका जीवन शुरू नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ओजामिल के चरित्र से हम लोग जान सकते हैं जो ओजामिल पहले तो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन संग के प्रभाव से उसको पतित होना पड़ा। इसके मूल कारण आँख देखती, उसका जो जितना सुंदर व्यवहार था, जो चरित्र था, पूरा उसका पलट दिया। और हम जानते हैं जी यह प्रसिद्ध कथा कहा गया है, तो ओजामिल ने इतना पाप करने के बाद भी मरने के टाइम में केवल एक बार हरिनाम, भगवान का नाम मुख में उच्चारण किया तो उसका सारे पाप से उसका छुटकारा मिला और उसका फिर सदगति हुआ। तो पश्चात आप यहाँ पे परीक्षित महाराज भी वही बात बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी ने भी वही बात अनुवाद में तक में लिख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जी प्राश्चित के ऊपर एक आलेख दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है जी बीवस। हम लोग पाप नहीं करना चाहते हैं तब भी पाप करने पड़ता है, इस कारण क्या है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर सिद्धांत है। हालांकि मेरा उतना तो क्वालिटी है ही नहीं है, तो मैनेजमेंट ने कल 11 बजे कहा जो कुछ भागवत कुछ चर्चा करना है, तो ठीक है आप लोग का जो आदेश है। तो हम लोग जो प्रारब्ध फल हैं जी अपना जो क्या बोलेंगे जे प्रायश्चित हैं ये हम कैसा करें और कैसे बचे और प्रायश्चित ना करना पड़े, इसके ऊपर एक दो श्लोक हम बोलेंगे। ये प्रायश्चित कोई हम कोई अपकर्म कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध करते हैं, तो इससे हम कैसा बच सके इसके ऊपर मैं कल पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा गया जे लगभग चार पांच माने मुख्य तो बहुत है, लेकिन चार पांच प्रकार के जो मुख्य उसका रास्ता है जे कैसे हम बचे, मतलब जो पाप हो गया है इसे कैसे बचे और पश्चित कैसा करे। तो इसमें लिखा गया जे अगर किसी का कोई गलत हो गया वो कैसे बचेगा, जो पश्चित करने को अपराध के जो प्रभाव पड़ गया हम कैसा बचे। इसको पर लिखा गया यह दान उपवास तीर्थ यात्रा से हम ये जो क्या बोले बच सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं दान, अगर कोई प्रायश्चित करना है तो हम क्या करते हैं, कोई गाय दान करते हैं, कोई भूमि दान करते हैं, कोई और कुछ करना दान करते हैं प्रायश्चित से बचने के लिए। अगर कोई गलती हो गया कैसे करिए, दूसरा है उपवास, कोई हम व्रत ग्रहण करते हैं जी हम और ये बुरा काम ये गंदा काम नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम जब कुछ एक व्रत ग्रहण करते हैं इससे भी हम लोग प्रायश्चित बच सकते हैं। तीर्थ यात्रा आप लोग जानते हैं ये तीर्थ यात्रा के ऊपर एक सुंदर कथा है जब बलराम जी तीर्थ में गए थे जब कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाले थे, तो बलराम जी देख रहे थे तो दोनों तरफ तो मेरे ही लोग हैं, मैं किससे सपोर्ट करूँ और किसका मैं दोस्त देखूँ। तो उसे निकल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन क्या हुआ जैसे उसने पहुँचा नमेश्वरण में तो वहाँ पे बीए शासन बैठ के क्या उग्र सर्वासुत प्रवचन कर रहे थे, भागवत कथा सुना रहे थे 60,000 ऋषियों को। तो भगवान भगवान ही है बलराम जी, तो उसके अंदर ये तो हम नहीं बोल रहे हैं जो उसका ये गुस्सा आया सिखाने के लिए। ये भगवान कुछ करते हैं ये जीव शिक्षा के लिए, अपने कुछ नहीं करते हैं। भगवान सत्यगुण हमेशा रहते हैं, कभी उसका क्रोध आ ही नहीं सकता। तो भगवान जब वहाँ पर गए तो वो सुत ने बेस आसन छोड़ के उठा नहीं, हालांकि सारे ऋषि उठकर उसको स्वागत किया लेकिन जो नहीं उठा। तो उसने क्या किया, गुस्से में आके छोटे से घास का तीन कर लिया और लेके बस ऐसा जस्ट छुलाया तो उसका मृत्यु हो गए। जब मृत्यु हो गए तो सब लोग हाय 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 करने लगे, बोले हे बलराम जी इतना लोग हम दूर दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए और अब उसको मार ही डाला तो हम कथा कैसे सुने, सब हाय हाय करने लगा। तो बलराम जी बोले जे देखो चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ आप लोग के लिए। तो उसी टाइम फिर उसने एक दूसरा सूत्र जन्म दिया जो बहुत महान मानते हैं। तो उस टाइम सब लोग पूछे उससे ये तुम जे ऐसा हत्या कर दिया तो आपको तो इसका फल भोगना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उस टाइम सारे मुनि ऋषि ने उसको बोल दिया था जे आप ऐसा करो ये तीर्थ में जाओ और सारे तीर्थ में स्नान करो और दर्शन करो, इससे आपका ये पराध फल नष्ट हो सकता है। परीक्षित महाराज भी जब उसको साप मिला तो भी भगवान कथा ऐसे सुन लेते तीर्थ में जाके गंगा नदी तट पर। हाँ तो इसे कई सारी कथा और हैं तो प्रभु जी बोल रहे थे, मैं पहले इसका बोला मैंने। और हम एक प्रसिद्ध कथा आप कल सुने होंगे, हाँ ये कल आप लोग सुने होंगे ये अपना प्रभुपाद जी का गुरु जी भक्त सिद्धांत शास्त्री ठाकुर जी इसे व्रत लिए थे। भागवत द्वादश स्कंध में बताया गया है जब अगर कुछ भगवान विष्णु के लिए भगवान के लिए लाए जाते हैं और उससे कोई ग्रहण कर लेते हैं भगवान के भोग लगाने के पहले, अगर वो चीज़ फिर भगवान को निवेदन किया जाता है तो जो भोग लगाते हैं आज उसको ग्रहण किया दोनों के पाप लगते हैं, ये भगवान बताते हैं उद्धव जी को। तो वैसा ही कुछ आम ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ लाए थे बाजार से भगवान को भोग देने के लिए, लेकिन क्या हुआ उस टाइम भक्ति सांसद ठाकुर छोटे थे नाबालक थे बच्चे थे कौन जाने, और वो फल था आम, आम देखने सुंदर होते हैं और उसको खुशबू सुंदर आते हैं और खाने में तो कोई बात ही नहीं है। तो देख के बालक बच्चे उसका इच्छा हुआ जब बस आम उठा और खाऊं, बच्चे देखा आम तो बस आम उठा लिया। एक कथा हम जानते हैं ये आम इतना सुंदर फल है अगर आप रस जाएंगे पड़ा रहे तो उसका आपको नज़र पड़ेगा, कभी भी आप जाइए कभी देखेंगे पड़ा रहे तो आपको नज़र पड़ेगा जी कैसा अच्छा ना पूरा है। तो बच्चे ने जब उठा लिया, उठाने के बाद वो तो खाना शुरू कर दिया तो पिताजी ने उसको डांटा, रे तुम क्या कर रहे हो, मैं भगवान के लिए लाया था ये आम, आज तूने उसका पहले पा लिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, अन्याय है, तुमको अपराध लगेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था तुमको, क्यों ऐसे किया। तो क्या करें बच्चे बच्चे हैं, जब उसको खा लिया तो क्या बोलेंगे वो। तो फिर उसने उस दिन क्या शपथ प्रतिज्ञा किया उसने जो आज से मैं आम ग्रहण नहीं करूँगा। तो उसके लिए अभी भी हम लोग आम को भोगने लगाते हैं, हाँ जैसे दृढ़ संकल्प लेने के बजाय से आज इतना बड़ा सिंह गुरु बने और उसका शिष्य पूरा संसार में पूरा दुनिया में हरि नाम को प्रचार कर दिया। तो अगर ऐसा कोई शपथ ले प्रतिज्ञा करे कि हम पाप नहीं करेंगे तो बच सकता है, संकल्प करना पड़ेगा। हाँ, तो अधिक से अधिक ये पाप कौन कराते हैं? ये जिह्वा कराते हैं। उसके पहले हम बोलते हैं ये पश्चाताप कैसे किया जाता है। उसके ऊपर जगन्नाथ जी का प्रसाद के ऊपर एक सुंदर कथा है, हम बोलते हैं ये कैसा हुआ। एक बेर जगन्नाथपुरी का राजा, नाम क्या था, तो क्या करे थे राजा, तो कुछ खेलते रहते हैं ना, तो कोई चौपट खेल रहे, चौपट क्या पासा होता है, हाँ ऐसा कुछ खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, तो उस टाइम जो मंदिर के पांडा था कुछ प्रसाद लेकर आया, और आने के बाद बोले कि हे राजा जी आपके लिए प्रसाद लाया मैं, आप ग्रहण करो। तो राजा ने केवल बस उसको छू लिया और बोले रख दो, बाद में ग्रहण कर लेंगे। लेने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो पंडा ने जाके बोल दिया वहाँ पे मेन पुजारी को, ये राजा ने जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, बस छू के रख दिया। तो वहाँ से एक आवाज आया जी आपने, हे राजा आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, प्रसाद अपराध किया है, आपने प्रसाद का अमान्य किया है, तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो राजा धार्मिक थे, अभी भी राजा हैं जो धार्मिक हैं, जब रजत्र होते हैं तो खुद झाड़ू लगाते हैं और हमेशा बोलते हैं जो मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, दास हूँ जगन्नाथ जी का। तो राजा ने भक्त थे तो बोले पूछे जे हम जे ये जो पाप कर ही दिए हम, इस प्रश्चित कैसा हम करें। तो जो हेड पंडा था उसने बोला जो जिस हाथ से आप अपमान किया है वो हाथ काट डालो। पर इतना बड़ा, बट ठीक है कि जगन्नाथ जी के चरण में अगर अपराध में हो गया तो हाथ क्यों, मैं सिर भी कटवा दूंगा लेकिन जगन्नाथ का प्रसाद का अपमान होने नहीं दूंगा। तो फिर घर में आ गए राजा, आने के बाद बहुत सोच रहे जे मैं ये हाथ कैसे कटाऊं, कैसे काटूं, अपना हाथ काट नहीं सकता, कौन काटेगा। तो राजा है, फिर तो उसने दिमाग लगाया, सोचते बहुत सोच रहे थे। तो रानी भी पूछ रही थी जे क्या हुआ, तो कुछ बोले कुछ नहीं ऐसे कुछ। तो एक दिन क्या हुआ, एक नाटक बनाया, हाँ उसने मंत्री को बुला के बोले जे मंत्री जी मैं जब सोता हूँ ना तो हर दिन रात को कोई भूतनी दो हाथ फैला के मुझे चिल्लाते हैं, बहुत डराते हैं मुझे, मैं क्या करूँ। तो मंत्री बोला कोई बात नहीं, अरे आप वो दिन बस आप सोते रहेंगे, मैं बस जगह रहूँगा और जैसे हाथ दिखा मैं काट डालूँगा, ये सीधा बात है, मुश्किल कहाँ है भाई, एक मिनट कर दूंगा, चुटकी में कर दूंगा मैं। तो राजा बोले नहीं मैं नहीं रहूंगा, उस दिन आप अकेले रहना घर में। तो ठीक है, राजा बाहर चले गए, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन मंत्री बस खड़ा रहे, तेरो तलवार लिया, बहुत चकाचक तलवार लेके खड़े हैं, कब आएगा, देखते रहा। ऐसा करते करते ठीक रात गंभीर हुआ, उस टाइम बस बाहर से खिड़की से अंदर से बस हाथ ऐसा कर रहे, चिल्ला रहे, आ भूत आ गया। तो मंत्री तो प्रस्तुत थे पहले से, उसने बस ऐसा तिरवल उठाया और काश से बस हाथ काट दी। हाथ काटने के बाद तो मंत्री खुश हो गए, लेकिन जब थोड़ा बात देख रहे जो उधर से राजा आ रहे हैं तो देखा हाथ काटा हुआ है, हाथ काट दिया मंत्री ने। तो मंत्री बहुत अफसोस कर रहा, हाय मैं क्यों आपका, मैं आप मेरा प्रभु हो, हमने आप ही का हाथ काट दिया, ये मेरा कैसा काम किया, मैं ही भगवान मेरे क्या होगा, हाँ ये मैं बहुत बड़ा नून हरामी किया, मैं क्षमा करो राजा, क्षमा करो मुझे, रक्षा करो, बोले हे जगन्नाथ मुझे बचाओ, प्रार्थना करने लगे। तो राजा ने कहे जे हे
मंत्री ये आपको कोई दोष नहीं है, आपने भला काम किया। बोले क्या किया? बोले ये हाथ मेरा प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद का अवमान किया, इसके लिए प्रायश्चित किया मैंने, इसमें आपको कोई गलती नहीं है। हाँ, तो जब सुने और उसी रात प्रभु जगन्नाथ सपना दे रहे हैं जो हेड पुजारी था उसको, ये पुजारी जितना हो जल्दी से जल्दी सुबह उठते ही मेरे प्रसाद जग राजा के दे के आना। हो गया, बस भगवान का आदेश मिला। बहुत जल्दी स्नान ध्यान करके प्रेम पूर्वक इतना बड़ा प्लेट सजा के, आप जानते हैं जो उसमें रखा जाता है प्रसाद में, हाँ, तो लेके बस आए। आने के बाद राजा को दे रहे हैं, तो राजा जैसे प्रसाद देखा है, देखते उसका इतना उल्लासित हो गया हो, इतना खुशी हो गया हो, वो सब कुछ भूल गया जो मेरे हाथ नहीं है, वो भूल ही गया। ये प्रसाद देखा उसने, बस अचानक ऐसा हाथ निकाला और हाथ निकालते जो दो कटा हुआ था बस जोर गया, आपने प्रसाद वो लिया। ये प्रस्ताव किया लेकिन भगवान के लिए, भगवान सही किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो हाथ कटा हुआ था वो हाथ जो जगन्नाथ जी का जो गार्डन है ना, बगीचा है ना, वहाँ पे उसको रखा गया, और रखा नहीं उसको मत गाड़ दिया गया, और उसी हाथ से एक वृक्ष हुआ, क्या नाम, देना, देना वृक्ष, ऐसे कुछ वृक्ष हुआ जिसके पत्ता फूल अभी भी भगवान को सजाया जाता है। कितना भक्त था, ये प्रसिद्ध फल है। तो इसमें और एक सुंदर कथा हम बोलेंगे, एक कथा में ये सीख रहे हैं हम लोग, ये प्रसिद्ध करना बहुत जरूरी है, तो भगवान हम लोग का फिर हेल्प करेंगे। तो जैसे हम लोग अधिक से पाप कहाँ किससे करते हैं, जीवा से करते हैं ना, हाँ जीवा से करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जीवा और दांत में झगड़ा लग गया। बोले जीवा बोल रहे हैं, दांत बोल रहे हैं, अरे जीवा हम कितना कष्ट से चिबाते हैं और तुम उसका टेस्ट ले रहे हो, तुम बैठ बैठ कर आराम ले रहे हो और हम कितना कष्ट कर रहे हैं, हम 32 भाई मिलके। बोले बोले दांत ज़्यादा मत बोला कर, हाँ। बोले क्यों, क्या कर लोगे, तुम जानते हो ना मैं इतना खतरनाक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ दिन बोल रहे थे ये कुरुक्षेत्र युद्ध में जो युद्ध हुआ था, जो महाराज युद्ध हुआ, केवल जीवा कारण हुआ ना, द्रौपदी ने बोल दी अंधे के बेटा अंधे, हाँ इससे शुरू होगा। एक कई सारे कहीं भी देखो, एक जीवा के कारण है, और जीवा कारण हम सारे पाप कर रहे हैं। तो जब उसको डांटा गया तो जीवा ने बोला तुम ज्यादा मत बोल, न तो मैं ऐसे तेरा काम करूंगा ना, तेरा 32 के 32 बाहर आ जाओगे। हाँ, अगर जीवा किसी उल्टा सीधा बोल दे, गाली दे दे, तो क्या छोड़ेगा, मारेगा, गुस्सा आता सारे दांत निकाल दे। हाँ, तो एक खतरनाक जीवा है। तो जीवा जो ये है, तो यहाँ पे गीता में हम पहुँचते हैं कि जीवा केवल दो इसका काम है, भगवान के भजन करना, भगवान के प्रसाद ग्रहण करना। हम क्या करते हैं, ये काम नहीं करते, उल्टा सीधा काम लगाते हैं और सब डिस्टर्ब होते हैं। अगर बताए जाते हैं जे अगर कोई जीभा कंट्रोल कर ले तो सारे का सारे कंट्रोल हो जाएगा, जीभा से पेट, पेट से सारे इंद्रियां। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे भगवान से, ये तो गया प्राश्चित कथा, लेकिन हम पापी अगर ना करें तो प्राश्चित करना ही नहीं है। हाँ, अगर पापी ना करे तो प्राश्चित किस बात के हैं। तो इसमें खूब सुंदर एक श्लोक हम जानते हैं, तीसरा अध्याय का 36 नंबर श्लोक आप याद होंगे, अथो केन प्रयुक्त अयम पाप चरति पुरुष अनिच्छन अपि वर्षिने बल दिव नियोजित। बोले हे वृष्णिवंशी, मानुष ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित किया होता है। क्यों होता है? हम चाहते नहीं लेकिन क्यों प्रेरित किया जाता है जबरदस्ती, ये तुम पाप कर, हाँ क्यों किया जाता है? और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हाँ, कोई चाहते पाप कर लेकिन जबरदस्ती पाप कराते हैं। भगवान से पूछ रहे अर्जुन जी ने, ये लोग कोई नहीं चाहते पाप करे लेकिन उसको पाप कराए जाते हैं, जबरदस्ती कराए जाते हैं, ऐसा लगता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कामो येसो क्रोधो येसो रोजो गुणो समुद्भव महासुन महापापमा विद्दिन एनम इह बैरिनाम। आप बोलेंगे कामो येसो क्रोधो येसो रोजो गुणो समुद्भव महासुन महापापमा विद्दि एनम इह बैरिनाम। बोलिए हे अर्जुन, इसका कारण है रजगुण। रजगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, और जो बाद में क्रोध रूप धारण करते हैं, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हाँ, कौन बोल रहे थे महाराज जी? ये काम के छोटा भाई क्रोध है, उसके कामानुज बोलते हैं काम का, कौन बोल लेते हैं, अच्छा बात है। तो अगर हम लोग ये सारे काम ये कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, तो हम लोग अगर एक काम को अगर हम जीते तो दूसरा किसी को जीतने का कोई तपस्या कोई करने को जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल काम हम जीत ले तो काम कहाँ से आ रहे हैं? कामो येसु क्रोध येसु रजगुण से आ रहे हैं। अगर प्रभुपाद की दिया हुआ ये चार नियम और ये जो साधना दिए हैं हम ठीक से करें तो काम क्रोध से हम बच सकते हैं। मंगल आरती आओ, 16 माला का जप निष्ठा पूर्वक करो, ऐसा नहीं हम कैसा भी हो बस खींच लिया और माला बस कर लिया छुट्टी, ऐसे नहीं। ध्यान पूर्वक जप करना, मंगल आरती में आके भगवान के दर्शन करना, प्रेम से प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना भगवान से करना कितना जरूरी है, इसमें कई सारे कथाएं हैं, तो टाइम कम होने के कारण हम ये बोलेंगे जो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं भक्ति और ठाकुर ने प्रार्थना करे थे भगवान से, हे भगवान मुझे एक ऐसा बच्चा दो जो राधारानी सेवा करे, प्रभुपाद को देवी यही बोल रहे थे। तो मिलते हैं, भगवान सुनते हैं, अगर हम इंसान ना सुने भगवान सुनते हैं। तो भगवान प्रार्थना करना है किससे हम काम से बचे। हाँ, और काम के रोकना नहीं है, काम को सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में। अगर हम क्या करते, कभी कभी कोई डॉक्टर भी बोल रहे थे जी, जैसे हम अगर कोई इसमें कई शरीर में कोई फून सी हुआ, घाव हुआ, हम क्या करते, उससे मलहम डाल के उसका बंद कर देते हैं, लेकिन ये हानिकारक है। ये जब कोई निकाल रहा था गंदगी शरीर से, उसका हम बंद कर दी, और वो क्या होगा, ये बड़े से बड़े रोग पैदा करेगा। क्या करते हैं, वो हार्ट में आते हैं, लंग्स में लगता है, किडनी के बीमार कर देते हैं, ऐसे तो कई सारे और हैं। तो हम भगवान के इतना सेवा करें, इतना सेवा करें, भगवान के लिए इतना सोचे, हाँ भगवान भक्तों के लिए सोचे, भगवान के लिए सोचे, तो धीरे 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 अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग का काम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो काम जब कम हो गया तो क्रोध ही नहीं आएगा, जब क्रोध नहीं आएगा तो अपराध नहीं होगा, और अपराध नहीं करेंगे तो फिर पश्चित किस बात का। तो यहां पे और एक है 16 अध्याय के दूसरा श्लोक में ऐसे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं अपना होलीनेस भक्त चारु स्वामी महाराज जी के गीतार गान से, से काम क्रोध लोप नर के रिदार तेजो तहा नय तीन साधु व्यवहार। ये गीता एक गान है, बंगाली में है केवल हिंदी में नहीं है। हाँ, ये जो काम क्रोध लोप ये क्या है, ये नरक के द्वार है। हाँ, उसके लिए साधु के कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, तो अगर कोई करता है तो मान लीजिए जो सीधा ये नरक के द्वार, नरक जा रहे हैं। जब हम कब जाते हैं प्रचार करने के लिए बाहर, तो कर्मी लोग कुछ बोली कभी बोल देते हैं तो हम लोग जब नाराज हो जाते हैं क्या करें। तो बोले भाई साधु लोग तो नाराज हो जाते हो, बोले तू कुछ बोलते रहो सह रहे हैं, अरे हनुमान तो लंका जला दिया था। तो वो लोग ये जानते हैं, लेकिन हम जो बोलते उन्हें सुनते हैं। तो कभी साधु के अंदर एक काम क्रोध नहीं आना चाहिए, और इसके लिए आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि, ये जो भोजन हम करते हैं ना, इसका शुद्धिकरण बहुत जरूरत है। हम तो बॉडी बनाने के लिए कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, हम फास्टिंग करते हैं तो ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो क्या उसे पड़ेगा प्रभाव। जैसे हम जानते हैं आहार में भी सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी है, सब्जी भी वैसे ही है, सब्जी भी सत्वगुणी है रजगुणी है तमगुणी है, इस सारे चीज में ऐसे हैं। अगर हम भक्त होने चाहते हैं, भगवान के भजन करना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमको जरूर भोजन जो प्रसाद है इसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। अगर हम भोजन शुद्ध न करें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हम भजन करते हैं या भोजन का दूल्हा सीधा तो कैसे होगा। उसके लिए प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर चार नियम दिए हैं, उसने पहले ही आमिष आहार भजन कहा है। केवल नहीं, शाकाहारी भी बहुत कुछ ऐसा कुछ मतलब क्या बोलो खाद्य है जिसके अंदर बहुत रजोगुणी भाव है। आप लोग तो हर दिन काजू खाते हैं ना, कैसे मन लगता है खा लीजिए आप 100 ग्राम, देखना आपका माइंड कैसे हो जाता है। हाँ, सच या झूठ? ज़्यादा खाने से बहुत दिमाग खराब करते हैं। कोई सा कोई गाजर नहीं खाते हैं, कोई मूली नहीं खाते हैं, कोई टमाटर नहीं खाते हैं, बहुत भक्त ऐसा। बड़े बड़े शांत महात्मा बारी में सुना है जो वो लोग केवल खिचड़ी ग्रहण करते हैं, नहीं तो रोटी और नहीं तो उबला हुआ सब्जी, बस सालों भर ये लोग ऐसे भोजन करते हैं और शुद्ध भजन करते हैं वो लोग। अगर आहार शुद्ध हम नहीं करते हैं तो मुश्किल है जब करना, नींद आएगा। हाँ हाँ, तो जिसका भाव जो है गोरे मोरबल खाते ही नहीं। और भोजन से क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है, जे लिखा आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति बारे रस सिद्ध स्त्री सात्विक आहारे। अगर आप सात्विक आहार करते हैं तो आयु बढ़ेगा आपका, आपका आयु बढ़ेगा। हाँ, और शरीर में बल बढ़ेगा आपका, शक्ति होता है सात्विक आहार में, रोग से मुक्त हो जाएंगे आप। और जब रोग नहीं है तो आपका फिर सुखी सुख है, सुख प्रीति बारे। जब आप सात्विक आहार करेंगे व्यवहार आपका अच्छा होगा, मीठा होगा, सबसे मीठा बोलेंगे। हाँ, इसमें धीरे धीरे आपका प्रीति बढ़ेगा। हाँ, और बहुत आप क्या बोलो स्निग्ध बहुत अच्छे होंगे आप। हाँ, और स्थिर रिद्ध आपका मन में बहुत शांति रहेगा। हाँ, ये सब सात्विक आहार के फल है। और ये सब हालांकि हम लोग को अच्छे नहीं लगते हैं, तब भी ग्रहण करना चाहिए। जैसा हरिनाम हम अच्छे नहीं लगते करने में, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 इतना रस आता है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मैं सुन रहा था, अपने एक प्रभु जी हैं कथा बोल रहे थे, जैसे हम एक कुछ प्रसाद में एक गुलाब जामुन देते हैं, जब पहले एक देते हैं बड़ा दे दो बस फटाफट खा लेते हैं, जो दूसरा देते हैं पहले हाँ दे दो खा लेते हैं, तीसरा गुलाब जाम दे दो खा ले वो खा लिया, चौथा बार आया गुलाब जाम चलो दे दो वो खाया, जब पांच बार पांचवा गुलाब जामुन लाया क्या लाया गुलाब जाम दे दो खा लेते, जब छठा बार आया बोले नहीं नहीं क्या गुलाब जामुन नहीं, 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 नहीं चाहिए, ये होता है ना। तब ऊपर पहले जो हम लिया कितना टेस्टी था, अच्छा लग रहा था, दूसरे बार थोड़ा कम हुआ, तीसरे बार और कम हुआ, चौथा बार और कम तो होते गया, पांचवा में कम हो गया, छठा में माना हो गया, वही चीज हुआ है। लेकिन हम जब जाते कुछ फोर्स करते हैं, प्रभु जी प्लीज एक माला जप कर लो, एक माला ज्यादा नहीं कर, एक माला जप कर लो, टाइम नहीं है प्रभु जी हम जप नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं है, हाँ हम जप कर लेते, जप कर लेते प्रभु प्लीज एक माला जप कर लो, बोलते 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 ठीक है कर लेंगे, एक माला जब बोल दिया तो चलो कर लेंगे, सच करेंगे ना, अच्छे तो छोड़ देना खुद कर तो लो एक आध माला पहले। तो जो प्रचार करते हैं हम सुना है उससे ऐसे हम बोल रहे हैं, तो एक माला पकड़ते पहले एक माला, जब वो जपते हैं पहले हाँ ध्यान रखना निष्ठा पूर्वक जप करना, क्या जो मुख में बोलना कांटे सुनना, हाँ और मन को माला में रखना, उसके लिए माला जपना विधि है, हाथ में ऐसा घुमाओ गुट्टी तो मन वहीं रहेगा। तो जब एक माला जप करना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ऐसे जब करते हैं, दूसरा माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, ऐसे करते 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 धीरे धीरे उसका रुचि बढ़ते जाते हैं। जब एक माला जप करते ऐसा मुख खींच के दूसरी माला वो जप करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, तीसरे चौथा पांचवा जप करते हैं तो प्रेम से जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसा जब उसका शुरू हो जाएगा धीरे धीरे गुलाब जाम जैसा नहीं, ये टेस्ट बढ़ते जाएगा, हायर टेस्ट बढ़ेगा। उसके बाद एक माला से उसका बच्चा पैदा होते 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 64 माला जपते हैं, है ना, बहुत भक्त यहाँ पर 64 जप, तब भी उसका मन नहीं भरता है, क्यों ये गुलाब जाम और हरिनाम के जो ये रस है दो अलग अलग हैं, ये आनंद बुद्धि बढ़ेगा आपका, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जब कोई एक नाम में रम गया तो भौतिक विषय से उसका दिल टूट जाएगा, मन नहीं लगेगा। कितना सारे भक्त आप लोग हैं, कितना अच्छे भक्त हैं, आप लोग के घर में कितना सुंदर व्यवस्था था, छोड़ के आके यहाँ कैसे भी आप दिन गुजार रहे हैं, तब भी मन नहीं करते तो बिना छोड़ के जाए, हाँ क्यों, ये हरि और हरि का नाम के बल है, कोई जाना नहीं चाहते। हरिदास के बोल लेते हरिदास हरिनाम छोड़ दो नहीं तो तेरा जान ले लेंगे, हरिदास ने क्या कहा, क्या श्लोक याद नहीं हो रहा है, हाँ कि मारिते मारिते लो जुदी जान तबु ना छाड़ीबो ए मधुर हरिनाम, ये तुम मारते में जान ले लो तब भी सही है, लेकिन ये मधुर हरिनाम है इसका हम छोड़ नहीं सकते। अगर कोई ध्यानपूर्वक हरिनाम जप करते हैं, भगवान का जो सेवा ठीक से करते हैं, प्रभुपाद के दिया हुआ नियम मानते हैं, तो वो कभी पाप नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। अब प्राश्चित कोई बातें ही नहीं, हम पाप करते हैं, प्राश्चित करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर प्राश्चित करते हैं। ये प्रसिद्ध महाराज ने इसको निंदा किया है, प्रभुपाद जी की निंदा किया है। ऐसा हम करना चाहते हैं, ऐसा हम करेंगे जिससे ना पाप हो ना प्राश्चित। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।